नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। नेपाल की सेना ने बढ़ती अशांति को लेकर निषेधाज्ञा लागू की। पूरे देश में कर्फ्यू बढ़ाया गया। भारतीय नागरिकों को स्थिति सामान्य होने तक नेपाल की यात्रा स्थगित करने की सलाह जारी की गई। असम सरकार ने 1950 के निष्कासन अधिनियम के अंतर्गत अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को स्वीकृति दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने को कहा, इसमें भारत भी शामिल। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों में पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया। और दुबई में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज शाम भारत का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से। अब समाचार विस्तार से। नेपाल की सेना ने आज शाम 5 बजे तक निषेधाज्ञा जारी की है। नेपाल में कर्फ्यू कल सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। सेना ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से ये कदम उठाया गया। आगे की स्थिति के आधार पर अगली सूचना जारी की जाएगी। हालांकि निषेधाज्ञा और कर्फ्यू के दौरान एम्बुलेंस, दमकल, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा वाहनों का संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन के तीसरे दिन आज सेना की तैनाती के बीच काठमांडू घाटी में माहौल शांतिपूर्ण रहा। नेपाल की सेना ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे बिना आवश्यक कार्यों के घर से बाहर न निकले। नेपाल की सेना ने नागरिकों से अपील यह भी की है कि अगर कोई उपद्रवीय सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो तुरंत उन्हें सूचित करें। सेना ने नागरिकों से सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करने का भी अनुरोध किया। इस बीच त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आज शाम तक बंद रहेगा। सरकार ने भारतीय नागरिकों को स्थिति सामान्य होने तक नेपाल की यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
सरकार ने नेपाल में भारतीय नागरिकों को अपने वर्तमान निवास स्थानों पर ही रहने, सड़कों पर जाने से बचने और पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही नेपाल के अधिकारियों और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी स्थानीय सुरक्षा सलाह का पालन करने की भी सलाह दी है। सरकार ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779806082881 और 9779813261134। नंबर एक बार फिर सुन लें। नंबर है 9779806082881 और 9779813261134। किसी भी सहायता के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। उन्होंने नेपाल में युवाओं की जान हानि पर पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने नेपाल के लोगों से शांति के प्रयासों को समर्थन देने की भी अपील की। उत्तर प्रदेश सरकार ने पड़ोसी देश नेपाल में बढ़ते संकट को देखते हुए उसकी सीमा से लगे अपने सभी जिलों में 2400 घंटों का हाई अलर्ट घोषित किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए पुलिस मुख्यालय लखनऊ में एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां पर 3 हेल्पलाइन नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर 2400 घंटे संचालित रहेंगे, जिसके माध्यम से नागरिक सीधे मदद हासिल कर सकेंगे। ये नंबर है 0522-239-0257 और 0522-272-4010। व्हाट्सएप नंबर है 9454401674। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया इकाई को भी निर्देशित किया गया है कि नेपाल से जुड़े किसी भी संवेदनशील सूचना या पोस्ट की लगातार निगरानी की जाए और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
नेपाल में मौजूदा हालात को देखते हुए सिक्किम सरकार ने महत्वपूर्ण स्थानों पर गश्त और जांच तेज कर दी है। सभी संबंधित सीमा चौकियों, खासकर रांगपो, मेली, रेशी व अन्य को सतर्क कर दिया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अनधिकृत व्यक्ति सिक्किम में प्रवेश न कर सके। पुलिस को वाहनों की जांच करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। वही उत्तराखंड से लगे भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। इस बीच एयर इंडिया और इंडिगो सहित अन्य एयरलाइनों ने कल काठमांडू जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी है। नेपाल की राजधानी में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। नेपाल एयरलाइंस ने भी कल दिल्ली से काठमांडू जाने वाली अपनी उड़ान रद्द कर दी। एयर इंडिया और स्पाइसजेट ने भी आज के लिए काठमांडू आने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी है। असम मंत्रिमंडल ने अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अप्रवासी असम से निष्कासन अधिनियम 1950 को लागू करने वाले वास्ते कल एक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत जिला आयुक्त संदिग्ध व्यक्तियों को 10 दिन का नोटिस देगा और अगर वो इस अवधि के दौरान अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाता है तो तुरंत उस व्यक्ति को असम छोड़ने का आदेश जारी किया जाएगा।
While upholding clause section 6A of Citizenship Amendment Act, Supreme Court through the constitutional bans has clearly indicated that the government of Assam is free to use the Immigrant Expulsion from Assam Act 1950 to detect and deport foreigners.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा करेंगे। श्री मोदी कल वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे। इस दौरान दोनों नेता विकास, साझेदारी, क्षमता निर्माण और सहयोग के संपूर्ण आयाम की समीक्षा करेंगे। इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की। उनका ये सपना तब साकार हुआ जब 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने दरों की युक्तिसंगत बनाने, कई क्षेत्रों को कर दरों की कम करने और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने को मंजूरी दी। आज हम जानेंगे कि ये सुधार शिक्षा के क्षेत्र में कैसा मददगार साबित होता है। एक रिपोर्ट।
सरकार ने स्टेशनरी वस्तुओं पर जीएसटी दरों में छूट देकर शिक्षा क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। नए सुधारों के तहत पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, अभ्यास पुस्तिकाएं, ग्राफ बुक, मानचित्र और चार्ट जैसी स्टेशनरी वस्तुओं को पहले के 12% जीएसटी से छूट दी गई है, जबकि रबड़ पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। विष्णु और सौम्या के साथ दृष्टि पुन्यानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से रूस के 2 सबसे बड़े तेल खरीदारों भारत और चीन पर 100% शुल्क का अतिरिक्त शुल्क लगाने का अनुरोध किया। अमेरिका पहले ही भारत पर 50% शुल्क लगा चुका है और अब उसने यूरोपीय संघ से भारत पर व्यापक शुल्क लगाने का अनुरोध किया। ये यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए मॉस्को पर दबाव बढ़ाने के उनके तथाकथित सामूहिक प्रयास का हिस्सा है। राष्ट्रपति ने आज वॉशिंगटन में अमेरिका और यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई और ये मांग रखी। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि इस महीने की 16 तारीख तक उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय टीमों ने मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जिलों का दौरा किया। एक रिपोर्ट।
केंद्रीय व्यय मंत्रालय के उप सचिव कमलदीप वी पटेल की अध्यक्षता में आए एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने चंबा जिला में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने के कारण हुई क्षति का जायजा लिया। केंद्रीय दल ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर नुकसान की विस्तृत जानकारी ली। चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने केंद्रीय टीम के प्रतिनिधियों को बताया कि जिले में भारी वर्षा के कारण विभिन्न विभागों को लगभग 43,433 लाख रुपए की क्षति हुई है। दूसरी ओर गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी पारसारथी के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने कुल्लू जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का विस्तृत आकलन किया। कुल्लू की उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने टीम को अलग अलग स्थानों में हुए नुकसान की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। केंद्रीय टीम ने आश्वासन दिया कि प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान की विस्तृत आकलन रिपोर्ट केंद्र सरकार के संबंधित विभागों को प्रस्तुत कर शीघ्र राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा। जितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए मैच में आज भारत का सामना मेजबान संयुक्त अरब अमीरात से होगा। और जानकारी के साथ है मुकेश कुमार।
पिछले वर्ष T20 विश्व कप जीतने के बाद ये भारत का पहला बड़ा T20 टूर्नामेंट है। इसमें टीम पूरी शक्ति के साथ उतर रही है। विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार कप्तान हैं, जबकि युवा प्रतिभा शुभमन गिल उपकप्तान हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के संन्यास के बाद ये टूर्नामेंट युवा भारतीय टीम के लिए पहली बड़ी चुनौती है। सीनियर खिलाड़ियों की अनुपस्थिति के बावजूद भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है और सबसे बड़ी दावेदार है। पिछले एक साल में खेले गए 20 T20 मैचों में भारत ने 17 में जीत हासिल की है। इस दौरान भारत ने 9.90 रन प्रति ओवर की आक्रामक बल्लेबाजी के साथ एशिया की सबसे मजबूत टीम होने का दम दिखाया है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।